त्रिलोक सार लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंतां, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाऊणं, बलगोविंदसिहामणि किरणकलावरुणचरणनः किरणं विमलयरणेमि चन्दं त्रिभुवनचन्दं नमंसामि। यह आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कृत त्रिलोक सार नामक ग्रंथ है और उसकी हिंदी टीका को हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ हम आए हैं पृष्ठ संख्या 30 पर, 30। अपनी बात तो ये संख्याओं को जाननी, वो बात चल रही थी। संख्या मान में संख्या मान और उपमा मान की बात हमने देखी। उपमा मान 8 प्रकार के होते हैं। केवल इतना कहकर उन्होंने संख्या मान कहना शुरू किया। संख्या मान के मूल 3 भेद है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। असंख्यात के फिर 3 भेद, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात असंख्यात। अनंत के भी 3 भेद, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। अब ये जो संख्यात का एक भेद, ये 3, 3, 6, 7 हुए, तो इनके सबके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ऐसे भेद हो गए, ऐसे 21 भेद हो जाते हैं।
यहाँ पर जो उत्कृष्ट संख्यात जो है वो समझाने के लिए पहले जघन्य असंख्यात की बात समझाना
चाहते,
जघन्य परित असंख्यात की बात यहाँ समझा रहे। उसमें से माइनस 1 करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात आएगी। आगे
तो यही जो हमने 3, 7 भेजे, हर एक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेज। पहले वाले का जो उत्कृष्ट है उसमें 1 ऐड करो तो नेक्स्ट वाला का जघन्य होगा, इस तरह से उसका अर्थ होता है। अब ये जो सबसे छोटा जो असंख्यात है, परिता संख्यात में भी जो जघन्य है उसको यहाँ समझाना चाहते हैं, वो संख्या कैसे लानी है। तो उसके लिए कहते पहले में पहले 4 कुंड बनाना है। ये अनवस्था कुंड तो बढ़ते जाएंगे, परंतु पहली बार जब बनाएंगे तो अनवस्था कुंड भी लाख योजन चौड़ा व्यास वाला, व्यास यानी डायमीटर, और उसकी ऊंडाई कितनी है, डेप्थ कितनी है, तो 1000 योजन। ऐसे 4 समान कुंड पहले में पहले करना। पहले का नाम है अनवस्था कुंड, दूसरा है शलाका कुंड, फिर प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। पहली बार जब अनवस्था कुंड भर देना, कैसे भर देना, तो फ्लैट तो भर ही देना, उस पर एक रास भी करनी, जिसको हम कहेंगे सिघाऊ भरना, मराठी में कहते शिक भरुण। पहले वो माप से तोलते थे ना धान, तो उसके ऊपर ऐसी रास बनाई जाती, उसको कहते सिघाऊ भरना। हिंदी में उसको सिघाऊ कहते हैं, मराठी में उसको कहते शिक भरुण। ऊपर ऐसे जैसे ऐसे वो माप होता है ना धान, ऊपर ऐसा राशि करते हैं।
पाली देखा है पहले,
वो देखा होगा ऐसे ऊपर करते रास करते। जघन्य संख्या के है 2 और उत्कृष्ट संख्या तो जघन्य परिता संख्या में से 1 माइनस,
और मध्यम
मध्यम सारे संख्या, मध्यम संख्या कहने 3, 4, 5, 6 अभी लाख करोड़ वो पद्म नील सब उसके अंदर आ गए, ये सारी संख्या बीच में आ गई। उत्कृष्ट संख्या तक की सभी संख्या मूल भाई, उसमें परिता संख्या, हाँ उसमें परिता युक्ता नहीं है, उसमें तो बस 2 है, वो जघन्य है और उत्कृष्ट है, वो तो उत्कृष्ट, और बीच वाले एक एक से बढ़ते हुए सारे मध्यम है। असंख्यात में हरेक असंख्यात में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट हो गए। अब यहाँ जघन्य परिता संख्यात की बात चल रही है, तो जघन्य परिता संख्यात नापने के लिए पहले हमने चार कुंड किए, समान है वो लाख योजन विस्तार चौड़ाई वाले, चौड़ाई ने व्यास वाले, व्यास के लिए जो गोल ऊपर का गोल है उसका डायमीटर यानी व्यास कितना है तो 1,00,000 योजन, जितना जम्बूद्वीप है उतना, हाँ सामने है और देख उसके 1,000 योजन है, और ये प्रमाण योजन में चल रही बात। तो इसके लिए क्या किया हमने कि उसके एरिया निकालने, घनफल जिसको कहेंगे, फ्लैट गोल के एरिया अगर हम कहेंगे निकालेंगे, जैसे हमारे रूम स्क्वायर टाइप है तो उसके एरिया निकालनी है तो दो बाजुओं का गुणाकार करते हैं, हम कहें हमारी इतनी स्क्वायर एरिया है यानी स्क्वायर फुट हमारा इतना घर है, परंतु गोलाकार एरिया को कैसा निकालना है उसके लिए नाप क्या है, तो पहले परिधि यानी सरकमफेरेंस, व्यास का अर्थ होता है डायमीटर, उसके आधी होती त्रिज्या, यानी हम कंपास से ऐसे गोल राउंड करते हैं तो कंपास में जितना नाप लेके हम पूरा राउंड करते हैं ना उसको कहेंगे त्रिज्या, रेडियस, और उससे दुगुना हो जाए व्यास यानी डायमीटर। तो हमने वो राउंड किया तो ये सरकमफेरेंस है जो राउंड लाइन मिली हमको, वो हमको गिननी है कितनी है, तो वो तो स्थूल रूप से डायमीटर ने व्यास से 3 गुना होती है, 1,00,000 योजन का हमने डायमीटर यहाँ लिया है तो वो 3,00,000 योजन उसकी परिधि होगी, हिंदी में उसको परिधि कहते हैं, मराठी में उसको परिघ कहते हैं, बात एक ही है, इंग्लिश में उसको सरकमफेरेंस कहते हैं, हाँ। तो ये व्यास से 3 गुना होता है तो 3 गुना हो गया वो सरकमफेरेंस। अब उसको क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा,
पहले सरकमफेरेंस का
सरकमफेरेंस निकाला ना 3,00,000 ही आया,
उसको उच्छेद से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल,
उच्छेद कहाँ नहीं, अभी उच्छेद नहीं, अब केवल सर्कुलर एरिया की हमको क्षेत्रफल निकालना है। 3,00,000 को किससे गुणा किया था याद है, 1/4 लाख से, त्रिज्या का आधा यानी व्यास का चतुर्थांश, व्यास के चौथाई से ये जो सरकमफेरेंस को गुणा करो
तो क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल आप पाई की बात यहाँ मत ले लो, पाई की बात तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए थी, व्यास को हमने 3 गुना किया ना, उसके बदले पाई यानी 21 सप्तमांश जिसको कहेंगे, उसको पाई कहते हैं अपनी भूमिति में, वो बात यहाँ नहीं है, वो सूक्ष्म गणित है, ये स्थूल गणित पहले चल रहा है। चार कुंड किए, सॉरी 22 सप्तमांश, मैंने 21 सप्तमांश कहा क्या, 22 सप्तमांश, अच्छा क्या याद दिलाए, थोड़ा थोड़ा 22 सप्तमांश है ना, क्योंकि 3 गुना से थोड़ा ज्यादा है ना, 10 का वर्गमूल है वो,
10 का वर्गमूल,
हाँ। अब ये चार समान कुंड किए, 1,00,000 योजन व्यास वाले है, उसका सरकमफेरेंस एक एक का हम निकालेंगे तो वही सबका होगा, तो वो तो 3,00,000 तो उसका परिधि आया, परिधि को व्यास के चौथाई से गुणा करेंगे यानी 3,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 लाख यानी 1/4 लाख, ये तो हमें सर्कुलर उसका मुंह जो है कुंड का उसके एरिया मिली, उसका क्षेत्रफल मिला। अब उसको हाइट से गुणा करेंगे यानी 1,000 योजन से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा घनफल, जिसको घनफल कहेंगे, इसको यहाँ खातफल भी कहा है, इतनी एरिया मिली। अभी हम वो सरसों उसमें कितने आती है उसका प्रमाण निकालना है, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए ये जो प्रमाण योजन है उसको ऑर्डिनरी योजनों में कन्वर्ट करना है। एक प्रमाण योजन में 500 व्यवहार योजन होते हैं, तो हमने ये जो 3,00,000 × 1/4 लाख × 1,000 इतने योजन लिए हैं, तो ये हर एक में 500 गुना करना पड़ेगा, यानी 500 के घन से गुना करना पड़ेगा, तो 3 बार 500 से गुना करेंगे तो हमें योजन मिले। अब योजन में से हमको अंगुल बनाने हैं, तो हमने वो सारे यूनिट्स देखे थे ना, ये उच्छेद अंगुल में फिर कितने अंगुलों का, फिर वो क्या क्या माप होता है, वो सारी बातें हमने देखी थी। तो हमने देखे थे कि एक योजन में कितने अंगुल होते हैं, तो 7,68,000 अंगुल होते हैं, हमने देखी थी बात। हमने वो अंगुल पाद विलस्थी हाथ बीक धनुष वगैरह वगैरह का माप दिया था, कोस और योजन, याद है ना? एक योजन में चार कोस होते हैं, एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, आदि आदि बातें। तो डायरेक्ट आपको उत्तर बताना है तो एक योजन इज इक्वल टू 768,000 अंगुल, ये हमने लिख के भी रखा था ना। अंगुल कहो या सूच्यंगुल कहो, सूची अंगुल का अर्थ होता है सिंगल लाइन में, प्रतरांगुल का अर्थ होता है उसकी एरिया, स्क्वायर वर्ग, अंगुल का वर्ग प्रतरांगुल कहता है, या सूच्यंगुल का वर्ग प्रतरांगुल कहलाता है, और सूच्यंगुल का घन है उसको घनांगुल कहेंगे। अब यहाँ हमको घन से गुणा करना पड़ेगा, 768,000 से तीन बार गुणा करेंगे क्योंकि थ्री डायमेंशंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए तो हमें ये सारे अंगुल मिले, इतने अंगुल मिले, 300,000 गुना 1/4 लाख गुना 1000, उसको 500 से तीन बार गुणा किया, 768,000 से तीन बार गुणा किया तो हमें सारे ही अंगुल प्राप्त हुए। अब एक एक अंगुल में यव कितने होते हैं, तो 8 यव होते हैं, और एक एक यव में 8 जू होती है, जू कहो या सरसों का डायमेंशन कहो एक ही बात। हाँ, तो हमने 8 को तीन बार और दोबारा 8 को तीन बार, इस तरह से 6 बार 8 से उसको गुणा करेंगे तो हमें सरसों का प्रमाण मिल जाएगा। तो इतना सारा किया तो उसको हमने देखा था, उसमें से 0-0 अलग निकाले और उसके वो फिर ये सारा कैसे वो गणित का बता दिया था। और ये चौकोर एरिया आई है, परंतु ये चौकोर एरिया आती है, परंतु जो गोलाकार होता है गेंद जैसा, ये तो क्यूब है ना, चौकोर यानी क्यूब है, क्यूब के एरिया से उतने ही व्यास वाले गोलाकार अगर लेते हैं तो चौबर वो कोण रह जाएगा ना, जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है, चौकोनी बॉक्स है और उसके अंदर लड्डू रखा उसी उतनी एरिया वाला, उतनी डायमीटर वाला, तो बाजू में वो रह जाते हैं ना एरिया, यानी राउंड जो है बीच में उसकी एरिया जो है घनफल है वो कम है। हाँ, स्क्वायर से, स्क्वायर यानी वो क्यूब से, तो इसलिए उसको हमने 9/16 का भाग दिया, 9/16 से उसको भाग दिया, यानी 16/9 से गुणा किया तो हमें गोलाकार सरसों का क्षेत्रफल मिलेगा, उसमें कितनी सरसों आएगी वो हमें प्रमाण मिल जाता है। तो ये सारा उन्होंने करके बताया था, पेज नंबर 24 में उनको वो डायरेक्ट संख्या बताई, और वो संख्या कैसे लाई तो वो कौन कौन सी संख्या उनको यूनाइट करते 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 लास्ट में उसकी फिगर क्या आई थी, 42 × 256 × 18 और ऊपर 31 0, इतना तो ये जो सीधा भरा था ना हमने उसका प्रमाण आया था। और ये भी जो गोलाकार का कैसे निकालना, ये 9/16 कैसा प्राप्त हुआ, ये 28 पेज तक हमने देखा था। अब उसके बाद ये जो टोटल उसकी संख्या, ये तो बादाल गुना अमुक 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 ऐसे बताए, अभी उसका भी गुणाकार करके उनके लास्ट फिगर कितनी आती है पेज नंबर 29 पर बताइए, वो ऊपर से दूसरी रहे संस्कृत में 1979129299968 0 और ऊपर वो 31 0। उसके लिए उन्होंने ट्रिक क्या की, श्लोक एक बनाया, एक चंद्र नव निधि, कितने नग, 7 नग होते हैं, नव निधि होती है रवि, वो उसके 12 राशि होती है, इस तरह से वो संख्या याद करने के लिए एक श्लोक रच दिया, तो उसकी एक एक संख्या ऐड वहां लिख दो तो हमें वो डायरेक्ट मिल जाती है। अब इतनी तो बात हो गई, ये तो हो गई पूरा सीधा भर दिया, तब अब ऊपर वो राशि करनी है, सिघाऊ भरना है, इसको शिखा फल कहते हैं, शिखा यानी उसके ऊपर टॉप पर हम जो रचित कर रहे हैं, तो उसका भी हमको एरिया निकालनी है। तो उन्होंने डायरेक्ट 29 पेज के लास्ट लाइन में गाथार्थ में ये बताया था कि परिधि के 11वें भाग को, परिधि हमने 300,000 निकाली थी याद है ना, तो उसको डिवाइडेड बाय 11 करना, परिधि के 6वें भाग के वर्ग से, देखो 6वें भाग का वर्ग यानी परिधि का छठ, देखो 3 गुना परिधि हुई थी, किसको गुणा थी? व्यास को तीन गुणा करने पर परिधि की, यानी परिधि के तीसरा भाग है वो व्यास है, तो परिधि का छठवां भाग क्या होगा? आधा व्यास, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। दूसरी भाषा में परिधि के छठवें भाग के वर्ग यानी त्रिज्या के वर्ग से गुणा करेंगे। हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, परिधि के छठवें भाग के वर्ग से गुणित करने पर समस्त कुंडों का शिखाफल प्राप्त होता है। हमको डायरेक्ट उसकी एरिया जो घनफल है ऊपर जो रास की उसका घनफल मिलेगा योजनों में। हाँ देखो, 300,000 हमारी पर सर्कमफेरेंस है, उसका छठवां भाग है ना एक चतुर्थांश, वन हाफ उसका वर्ग है ना 1/4। छठवां भाग कितना आया? 3 का छठवां भाग, एक द्वितीयांश आया ना। अब एक द्वितीयांश का वर्ग करो, एक चतुर्थांश होगा ना। हाँ, क्योंकि एक का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, परंतु वर्ग किया ना इसलिए एक चतुर्थांश लॉ स्क्वेयर हो जाएगा। एक बटा चार केवल ऐसा नहीं लिखना, 3/11 ल है और 1/4 ल स्क्वायर होगा, क्योंकि हाफ ल इंटू हाफ ल है। हाँ ल स्क्वायर लिखो, मैंने भी गलती से ल लिखा था, ल स्क्वायर होगा। ये 3/11 ल इंटू 1/2 ल इंटू 1/2 ल ऐसा होगा ना वो। उन्होंने ऐसे ही लिखे, फिर उसके आगे करेंगे उसको। हाँ हाँ, लघन आ जाएगा सब पूरा। अभी हम देखेंगे, हम आते हैं 30 पेज पर, ये तो अपनी बात हुई थी। हाँ हाँ बराबर है। 12 कैसे? 3 आएंगे ना, 3 × 1 × 1। हाँ फिर ऊपर 12 कैसे आए? 11 किधर है? 1 × 1 है। हाँ तो उन्होंने 11 का 44 किया ना, ऊपर कैसे कर रहे हैं आप 12? नीचे आप लिखा। हाँ ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर तीनों का गुणाकार करो।
हाँ
नहीं, ये एडिशन थोड़ी है, गुणाकार है। एडिशन करने में समच्छेद होता है, ऊपर डायरेक्ट 3 ही रहेगा, 3 × 1 × 1 और ल का घन हो जाएगा 3 ल घन / 44 घन। हाँ 44, ये जो हमने कल जब एडिशन करते हैं ना, माइनस करना है या मिलाना है, तब जो छेद होता है सबके समान होने चाहिए। ये समान छेद करने के लिए उसी ऊपर नीचे हम बराबर है, आपने पूछा ही, अच्छा किया। हाँ प्लस माइनस, गुणा में तो डायरेक्ट गुणा ही हो जाता है, गुणा करने में कोई अंश छेद असमान हो तो कोई प्रश्न नहीं आता। यहाँ तक बात ख्याल में आई ना? अभी हम 30 पृष्ठ पर लेते हैं। परिता संख्यात के लिए कुंड के ऊपर के जो रास है उसका एरिया निकाल रहे हैं। पल्ले यहाँ कहीं नहीं है, पल्ले बहुत आगे है। पल्ले तो असंख्याता संख्यात में आएगा, मध्यम असंख्याता संख्यात, अभी जघन्य परिता संख्यात की बात चल रही है, और वो जघन्य परिता संख्यात भी बहुत दूर है। अभी तो संख्यात संख्या चल रही है, अभी कुंड में कितने सरसों आते हैं, अभी ये संख्यात सरसों है, अभी असंख्यात में अंतिम अनावस्था कुंड में जो सरसों आएगी वो असंख्यात में चली जाएगी। अभी जरा धीर रखना। हाँ, असंख्यात युक्त प्लस असंख्यात युक्ता संख्यात, वो संख्यात का भेद नहीं, वो असंख्यात का है। संख्यात में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, ऐसे तीन ही भेद है। आगे बढ़े।
हाँ,
ये विशेषार्थ 30 नंबर के पृष्ठ का फिर से पढ़ते हैं, कल हमने थोड़ा पढ़ा था। यानी हमने अभी तक क्या क्या देखा है उसको देखते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 नंबर का पेज निकालना है आपको। देखो, कुंड का व्यास 1,00,000 योजन का होने से परिधि 3,00,000 योजन की हुई। परिधि का 11वां भाग परिधि डिवाइडेड बाय 11, अथवा हमारा 3,00,000 है ना, 3,00,000, 3,00,000 डिवाइडेड बाय 11 हुआ, यानी 3/11,00,000। इस 3/11,00,000 को परिधि के 6वें भाग परिधि डिवाइडेड बाय 6 के वर्ग से गुणा करना। उन्होंने वही 3,00,000/6 ऐसी फिगर रखी है। हाँ, तो 3,00,000/11 इंटू 3,00,000/6 इंटू 3,00,000/6 डिवाइडेड है, उसके मैं आसान हूँ इसलिए देख रही हूँ। इनका परस्पर में गुणा करने से समस्त कुंडों का शिखाफल प्राप्त हो जाता है। समझते ना, एक एक का हर एक का अपना अपना, क्योंकि शलाका प्रतिशलाका और महाशलाका कुंड भी प्रथम अनवस्था कुंड के सदृश है। प्रथम शब्द डाला है, बाद में अनवस्था कुंड की एरिया अलग अलग होने वाली है, उसका व्यास बढ़ने वाला है, गहराई भले उतनी रहे। तो कहते सभी स्टार्टिंग में सभी 1,00,000 योजन व्यास वाले हैं, अतः समस्त कुंडों की शिखा समान होगी। यहां तक बात ख्याल में आई ना? वो अभी 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 चालू हो गया। वही कल शोभा बहन पूछ रही थी, वो अभी खाली कब करना, जैसे रोमखंड निकालते हैं ये भी उसको टाइम है। अभी पहले वो सरसों कितने उसको गिनेंगे, बाद में वो कहाँ डालना क्या करना उसकी बात है। राई राई। अब प्राप्त फल की वासना कैसे होती है उसे कहते हैं, यानी कैसे निकाला, तो उसके कंफर्मेशन अभी बताएंगे। ये प्राप्त फल ने ऊपर डायरेक्ट बताया ना, 11 के भाग देना, उसके 6ठा भाग करना आदि आदि बातें, उसकी बात यहाँ बताएंगे। व्यास से तिगुनी परिधि हुई, यानी 1,00,000×3 तो 3,00,000 हुई। ये डायरेक्ट 3,00,000 क्यों लिया, तो वो परिधि का प्रमाण। इसको व्यास के चौथाई से गुणित करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है, यानी गोल का क्षेत्रफल। अभी हमारे पास कैसी एरिया है मालूम है ना, अभी हम कोई ऐसा कोण करते ना कागज से, मान लेते ऐसा रखना है हमको, तो ये गोल एरिया मिले। हम ऐसा कोण बनाते हैं मेहंदी जैसा हो, तो नीचे की जो एरिया है, अभी इतनी बड़ी रास नहीं होगी पर थोड़ी ऐसी होगी, मैं समझाने के लिए, यानी इसको कहेंगे शंकु या ये ऐसा गोलाकार। तो नीचे की जो एरिया है राउंड, उसकी क्षेत्रफल उसका निकालना है। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिधि हमने निकाली 3,00,000 और उसके व्यास के चौथाई से गुणा करना, 1/4 L से गुणा करना, ये तो हमने पहले भी निकाला था, और वो नीचे का तो समान था ना सिलिंड्रिकल, इसलिए 1,000 से उसको गुणा किया था। अभी हमने केवल पहले क्या किया, एक गोलाकार का क्षेत्रफल निकाला। अभी डायरेक्ट हाइट से गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर तो टेपरिंग है, वो बात अब बताएंगे। तो क्षेत्रफल प्राप्त होता है, इसको शिखा की ऊंचाई यानी वेद से गुणित करने पर लब्ध प्राप्त होता है। अब ये ऊंचाई उन्होंने डायरेक्ट बताई है कि 11वें भाग प्रमाण है, उसको भी बताएंगे कैसे निकालना। तो फलत्ति भागप्य गाथा 19 के अनुसार इसका यानी 3 ल गुणा 1 चतुर्थांश ल गुणा 3 ल डिवाइडेड बाय 11 यानी 1 तिहाई करने से 3 ल गुणा 1 ल बाय 14 गुणा 3 ल बाय 11 इंटू 1/3 शिखा का घनफल प्राप्त होता है। अब उन्होंने उसका तिहाई किया ना, फिर से हाँ, क्योंकि उन्होंने वो इसका स्क्वायर लिया था ना, व्यास के आधे का स्क्वायर, वो बात वो बता रहे कैसे निकाला क्या लिया। अब ये पूरा पढ़ेंगे ना तो मैं थोड़ा आपको बता सकूंगी। उन्होंने क्या किया, उसका जो एरिया निकाली थी ना
उसका हाइट से गुणा किया।
हाँ, उसको ल के 11वें भाग से गुणा किया था।
हाँ, तो वो शिखा की जो हाइट है उससे गुणा किया,
उससे गुणा किया और उसका तिहाई किया, गुणा करके उसकी तिहाई की। तो करने से क्या हुआ, 3 ल, अभी आगे की यहीं से पढ़ेंगे, 1 ल चतुर्थांश इंटू 3 ल ग्यारहांश, यहाँ तक तो समझ में आई बात, क्योंकि उन्होंने बताया था उसके परिधि के 11वें भाग से गुणा करना है और फिर उसकी 1/3 किया, ये शिखा का घनफल प्राप्त होता है। तिहाई के 3 से परिधि के 3 का छेद कर देने पर वो 3-3 चले गए, तो 3 ल डिवाइडेड बाय 11 वैसे ही रखा, पहला जो 3 ल था उसको भी वैसे ही रखा है, 1 चतुर्थांश ल को ऐसा ही रखा है, ये ऐसा कुछ वही तो ऐसा 3 ल क्यों लिखा है, मेरे में गलत है, मेरे में गलत है,
3 ल लिखा है मेरे में,
एक ल होना चाहिए, वही तो मैं कह रही थी ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर,
एक ल हुआ।
हाँ वो है, वो यहाँ हमारे यहाँ 3 ल लिखा है, इसीलिए मैं रुक गई कि ऐसे गलत क्यों लिखा। हाँ देखो, 3 ल का 1 ल कर दो पुराने पुस्तकों में, हाँ यानी 1 ल इंटू 1 ल चतुर्थांश इंटू 3 ल ग्यारहांश, बराबर है ना यहाँ तक। अब 1 चतुर्थांश के स्थान पर 1 द्वितीयांश करने से 1 द्वितीयांश ल गुणा 1 द्वितीयांश ल, वो तो 3 कट हुआ, ल तो वैसा ही रहा है और वो 4 को 2-2 में बढ़ गया, दूसरे ल के नीचे भी 2 रखा और 1 ल के नीचे भी 2 रखा, एक ल चतुर्थांश को नहीं खाली 4 को, छेद के 4 को 2 गुना 2 किया, पहले 1 ल था उसके नीचे एक छेद भेज दिया, इन्हें ल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ल डिवाइडेड बाय 2, जो उन्होंने पहले ही बताया था परिधि के 6 भाग का वर्ग करना, तो आधा आधा करने से 1 ल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 ल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 ल डिवाइडेड बाय 11 प्राप्त हुआ। 1 द्वितीयांश के अंश व हर को पढ़ना, एक द्वितीयांश, एक द्वितीयांश करने से हाँ वही तो पढ़ा मैंने,
एक
नहीं नहीं वो ल के बाजू में एक चतुर्थांश है ना, केवल एक चतुर्थांश को डिवाइड किया, ल को वहीं वहीं पर रखा, एक गुना ल है वो, उसमें से एक चतुर्थांश को उन्होंने एक द्वितीयांश किया। हाँ, दूसरे ल के नीचे दो रखे, यानी वो चार के बदले दो 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 गुना दो करे, अब वो एक एक ल के नीचे रख दिए। यहाँ तक बात ख्याल में आई? अब आगे, एक द्वितीयांश के अंश व हर को, हर यानी छेद, अंश और छेद को, छेद यानी नीचे लाइन के नीचे वो छेद है, लाइन के ऊपर है वो अंश है, तीन से गुणित करने पर, अभी जो एक द्वितीयांश ल था उसके बदले उन्होंने तीन षष्ठमांश कर दिए, वैल्यू तो उतनी की उतनी रही, वो परिधि का छठवां भाग था, ये उनको समझाना था, या डायरेक्ट आधा है नहीं, वो तो व्यास का आधा करते, आधे के वर्ग करते तो लिखते तो भी चल जाता, परंतु उनको परिधि के प्रमाण में ही उसको बताना था। तो एक द्वितीयांश के बदले तीन षष्ठमांश ल मल्टीप्लाइड बाय तीन षष्ठमांश ल मल्टीप्लाई तीन ग्यारहांश ल, यह तो बात ख्याल में आई ना, वैल्यू उतनी रही है। अथवा अभी तीन ल डिवाइडेड बाय छह जो है उसको दो बार लिया है तो उसका वर्ग करो, तो तीन षष्ठमांश ल का स्क्वायर किया, वर्ग किया, इंटू ल, तीन ल डिवाइडेड बाय ग्यारह हुआ, परिधि तीन ल है, अतः तीन ल के स्थान पर परिधि स्थापन करने से, क्योंकि हमको यह फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि अभी तो एक लाख वाला है, योजन वाला है, आगे जब उसकी शिखा फल निकालेंगे कहीं पर भी निकालना है तो क्या होगा, परिधि का छठवां भाग का वर्ग करो और मल्टीप्लाइड बाय परिधि का ग्यारहवां भाग, अर्थात परिधि के ग्यारहवें भाग को परिधि के छठवें भाग के वर्ग से गुणा करने पर शिखा का घनफल प्राप्त होता है, यह स्थूल क्षेत्रफल है, क्योंकि हमें तो स्क्वायर रूट 10 या 22 सप्तमों से गुणा करके निकालेगा वो सूक्ष्म घनफल मिलेगा, ये तो स्थूल बात है। पहले के सदृश इनके भी व्यवहार योजन आदि बना लेना चाहिए। आदि यानी क्या करेंगे, 500 से तीन बार गुणा करेंगे तो व्यवहार योजन आएंगे, 768,000 से तीन बार गुणा करेंगे तो अंगुल आएंगे टोटल, और उसको 8 से 6 बार गुणा करेंगे तो सरसों
का
स्क्वायर आएंगे, और उसको 9-16 से भाग देंगे यानी 16-9 से गुणा करेंगे तो गोलाकार सरसों का प्रमाण आएगा। अब आगे पढ़ेंगे हम इसको, अथ केशाम केशाम वेद परिध्य परिधि एकादश भाग इति आह, किन किन वस्तुओं का वेद यानी ऊंचाई परिधि के ग्यारहवें भाग प्रमाण होता है उसे कहते हैं। ये डायरेक्ट उन्होंने ग्यारहवां भाग वेद होता है ऐसा कैसे निकाला, कौन कौन सी ऐसी एरिया होती है कि जिसका वेद यानी जो हाइट है वो परिधि के ग्यारहवें भाग प्रमाण होती है, ये प्रश्न है। हम पढ़ेंगे 23 नंबर की गाथा, तिल सरिसव बल्लाड विचयनयत सिकुलत्थराय मासादि परिणा हे कार समो वे हो जदि गयन गोरासी, तिल सरषप बल्लाड किंचन कात सिकुलत्थराज मासादे परिध्ये एकादशो वेदो यदि गगन गो राशि। आकाश को व्याप्त करने वाली गगनगो राशि यानी ऊपर आकाश में जो पहले तो वो सिलेंडर में भर दिया और ऊपर आकाश में राशि कर दी, उसको कहेंगे आकाश को व्याप्त करने वाली तिल सरसों वल्ल अरहड़ चना अलसी, अरहड़ अरहड़ यानी तुअर की दाल या तुअर तूर चना तुर, तुअर की दाल रहती ना, उसको अरहर की दाल कहते हैं। अरहर यानी तुर, डायरेक्ट हम उसके तो बिना यानी उसके दो दल किए बिना जो होता है उसको कहेंगे चना, अलसी। अभी फॉर एग्जांपल बताए, अभी ऐसे धान की कोई भी राशि ले सकते हैं, ज्वार भी ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, कुलथ कुल्थी जिसको कहेंगे, और उड़द आदि की, आदि में सब ले लेना अलग अलग धान वगैरह। सिखाऊ राशि परिधि के ग्यारहवें भाग प्रमाण होती है। अभी जमीन पर भी अगर हम उसका ढेर करेंगे तो जमीन पर जो है वो गोल एरिया, और ये हमने ऊपर राशि कर दी, यहाँ तो हमने वो गड्ढे में भर कर ऊपर राशि की है। कोई कोई जमीन पर भी ऐसी राशि कर सकते हैं ना, उसके एरिया कैसे निकालने घनफल वो उसका। हाँ, कुल्थी, कुल्थी यानी वो कुड़ित, कुड़ित नाम का एक अनाज होता है, कुड़ित, कुड़ित, कुड़ित होता है वो कुल्थी की उसल वगैरह। वो कुलत कुलित नहीं देखा आपने, कल्की, वो अलसी अलग और कुलित अलग। आप हमेशा कहते ना देखना चाहिए सर, वो कुलित वो वापरते भी नहीं हम वो। हाँ, कुलित नाम का एक अनाज आता है, यानी ये कड़धान्य में से एक कड़धान्य, वो एक टाइप का अलसी यानी दवस। हाँ, वही वही फ्लेक्सीड कहते हैं ना,
फ्लेक्सीड।
हाँ, आजकल उसका फैशन है नहीं, अभी उसके हाँ गुणगान अभी पता चले अभी। हाँ हाँ, देखो विशेषार्थ, तिल सरसों आदि वस्तुओं के ढेर के मूल भाग की परिधि का जितना प्रमाण होता है, ये मूल यानी जमीन पर मान लेते हमने उसकी ऐसी रास बनाई, तो जो गोलाकार नीचे है जमीन पर उसको कहेंगे, उसकी जहाँ मूल भाग कहेंगे, उसकी परिधि का जितना प्रमाण होता है, आकाशगत ढेर का वेद है यानी ऊंचाई उसका ग्यारहवां भाग होता है। ये तो पता नहीं था ना कितनी बड़ी राश हो जाएगी, परिधि का ग्यारहवां भाग। जैसे पृथ्वी पर लगी हुई तिल की राशि की परिधि का प्रमाण 11 हाथ है, उन्होंने हाथ में बता दिया, वह राशि पृथ्वी से एक हाथ ऊंची होगी।
ये सभी के लिए स्टैंडर्ड है इसके?
हाँ, स्टैंडर्ड बताए कितना ऐसा हो जाता है, परिधि कितनी हो सकती है। अतः गुणित राशि उच्चार थी, यानी ये जो निकाला ना अभी उसका कहेंगे उसके वो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ क्या बताया हमने, तीन ल डिवाइडेड बाय ग्यारह, इतनी तो बात आई ना। फिर उसके व्यवहार योजन किए हमने, फिर उसके अंगुल बनाए, फिर उसके सरसों बनाए, तो उसकी गुणित राशि भी बताएंगे ना अभी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ 24 नंबर में बताने वाले बेरुवतदीय पंचम वग्गम अठारसे ही संगुणियम तेतीस सुन्नजुत्तम हरभजिदम जम्बुदी वसिहा द्विरूप तृतीय पंचम वर्ग अष्टादशभिः संगुणितः त्रयस्त्रिंशत् शून्ययुक्तः हरभक्तः जम्बुद्वीप शिखा। जम्बुद्वीप शिखा ने वो 100,000 योजन की शिखा कैसे होगी वो बताए। द्विरूप वर्गधारा, ये द्विरूप वर्गधारा क्या है उसको देखते हैं। वैसे हमने बहुत बार इसका नाम लिया है, द्वि यानी दो रूप यानी दो संख्या, उसके वर्ग और वर्गों की धारा। जैसे हम पढ़े ना टू टू दो गुना दो गुना होते हैं। वैसे ही ये कैसी ये धारा है, ये सीक्वेंस कैसा है, वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग स्टार्टिंग विथ दो के वर्ग से ये स्टार्ट होता है। तो इसके पहला वर्ग स्थान है चार, दूसरा वर्ग स्थान है सोलह, यानी दो का वर्ग चार से शुरू होता है, ये पहला वर्ग स्थान है। चार का वर्ग सोलह होता है, ये दूसरा वर्ग स्थान है। सोलह का वर्ग 256 होता है। ये पूरी जो धारा है उसको कहेंगे द्विरूप वर्ग धारा। अंतिम स्थान कौन सा होगा अश्विन भाई? केवल ज्ञान। अरविंद भाई ने बताया था अंतिम स्थान केवल ज्ञान कुछ नहीं है ना, और वो द्विरूप वर्ग धारा में आता है, घन धारा में नहीं आता है।
तो घन धारा का अंतिम स्थान है वो केवल ज्ञान,
केवल ज्ञान से छोटा होगा, छोटा होगा। घन धारा में क्या होता है वो तो आठ क्या वर्ग 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 ही चलता है ना, आगे वर्ग वर्ग में ही बात चलती है।
अच्छा आठ का वर्ग
वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग होता है। पहला स्थान कौन सा है उनका?
नहीं आठ का है।
पहला वर्ग स्थान कौन सा है?
घन। दो का घन,
दो जैसे दो का वर्ग चार, ये हमारा पहला वर्ग स्थान है।
और घन धारा में आठ का पहला स्थान,
पहला स्थान आठ, उसको वर्ग नहीं कहेंगे। स्थान आप आठ कहेंगे तो वर्ग सेकंड स्थान पर चले जाएगा।
तो घन धारा में पहला स्थान कौन?
वर्ग स्थान, अगर वर्ग स्थान लेना है
तो
आठ का, ठीक आठ का वर्ग चौसठ
हो जाएगा, 512 हो जाएगा। नहीं 512 का,
512 जो है ना वो घना घन होता है और उसका वर्ग वो तो 2 लाख कुछ, वो पहला स्थान होता है। यानी वर्ग स्थान अलग बात है और धारा का पहला स्थान बात अलग है। अभी हम वो बात छोड़ दो, अभी अपनी यहाँ द्विरूप वर्ग धारा क्या है उसको हमने देखा। दो का वर्ग चार से चालू होकर वर्ग 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 होते उसको द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। अब ये द्विरूप वर्ग धारा के तीसरा स्थान कौन सा है? 256, चार सोलह और 256। और पांचवे वर्ग स्थान का पांचवा वर्ग स्थान कौन सा है? चौथा वर्ग स्थान पन्नटी है, पांचवा वर्ग स्थान बादाल है। देखो वर्ग स्थान का क्या अर्थ है, हमने दो के वर्ग से शुरुआत करना है और आगे वर्ग के वर्ग ही करते जाना है। तो पहले नंबर का वर्ग कौन सा है? चार है। पार्टी पर लिखो, पहले बार हमने चार लिखा, चार के आगे सोलह, ये सेकंड स्थान हुआ ना वर्ग का, फिर 256 तीसरे स्थान पर, उसके माथे पर उसका वर्ग स्थान लिखो, चौथे में वो 65536 यानी पन्नटी, वो चौथा वर्ग स्थान, 65536 हाँ पन्नटी, और उसका पांचवा वर्ग स्थान है वो बादल है, यानी 42 इज इक्वल टू जो है ना साइन, वो बादल की होती है, यानी तीसरे स्थान और पांचवे स्थान। देखो फिर पढ़ेंगे, द्विरूप वर्ग धारा के तीसरे और पांचवे वर्ग स्थान का यानी बादाल का परस्पर में गुणा करने से जो लब्ध प्राप्त हो उसको 18 से गुणित कर और 33 शून्यों से सहित करना चाहिए। पहले हमने क्या किया था, बादाल मल्टीप्लाइड बाय 256 इंटू 18 किया था ना, और उसके ऊपर 31 शून्य। अच्छा देखो देखो क्या है? वो गड्ढा तो 1000 योजन का था, 1000 योजन यानी 300000 का कितवा भाग हुआ?
तीसरा भाग।
तीन ल था, ल यानी 1 2 3 4 5 0 डिवाइडेड बाय 1000 योजन, सॉरी क्या हुआ, हजार उसका कितना भाग है?
3 लाख का,
1 लाख का ना,
3 लाख का,
3 लाख का हजार कितने में भाग है?
300 भाग है,
300 भाग है।
यानी ये गड्ढा ऐसा लंबा किया था, तो इसका 300 भाग था, उसकी हाइट नीचे के सिलेंडर की 300 भाग थी और ऊपर राशि की वो 11 भाग है, इसने 33 जीरो आ गए ऊपर,
और 300 × 11।
हाँ देखो ये संख्या बड़ी है,
मतलब ऊपर की राशि की संख्या ज्यादा है,
देखो अंदर, हाँ हाइट उसकी ज्यादा है,
1 लाख का 11 बापा, नहीं 3 लाख का 11 बापा, और ये
3 लाख का 11 भाग निकालो कितना होता है?
3 लाख का 11 भाग तो बहुत बड़ा होता है,
1, 2, 3, 4, 5 जीरो है ना, डिवाइडेड बाय 11 करो, 11 × 22 8, 11 × 77 3, 11 × 22 11 × 77 2727 ऐसा कुछ आ जाएगा। ये देखो ना, यहाँ 27, फिर ये 7, ये 27, फिर 7, फिर 2 आ जाएगा, 27,272 आते हैं, योजन डिवाइडेड बाय ना 11 से डिवाइड करने पर इतनी आई बात, टोटल नहीं जाता अपन, कुछ रह जाता है, फिर वो छोड़ भी दो, उसको छोड़ भी दे दो,
ऊपर की राशि बहुत बड़ी है बेटा, हमेशा ऐसे सोचता था नीचे का गड्ढा बड़ा है,
मुझे ऐसा लगा था, पर अभी ये 33 जीरो देखा मैंने तभी ख्याल में आया,
ओ तो नीचे इतना है और ऊपर इतना है,
ऐसा देखो ना, जमीन पर रास करते तो क्या होता है, नीचे तो कुछ नहीं है, और नीचे 1 फुट का गड्ढा करो तो भी रास तो उतनी की उतनी वो ऊपर तो आएगी ना,
अच्छा तो वो उससे बात
है। हमें तो ऐसा लगता है नीचे जो है, क्योंकि हम वो वर्टिकल सिलेंडर होता तो ऊपर की रास कम हो जाती, देखिए अभी हमने जो पढ़ा ना 24 नंबर का, देखो इसके 31 नंबर के जो संख्या अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके साथ आप 28 नंबर के 20 गाथा का गाथार्थ देखो, 28 पेज 20 नंबर गाथा और उसका गाथार्थ देखो, वहां पर भी बादाल में कन्वर्ट किया है, बादाल को 256 से गुना करने से, और यहाँ हाँ ठीक है ना, उसकी बात नहीं, ये नहीं नहीं वो बादाल और 256 वहां पर भी थे और 18 वहां पर भी थे, देखो बादाल 256 और 18 का गुणा कर 31 शून्य से सहित करना है। अब यहाँ क्या है, ये तो योजनाओं का प्रमाण मिल रहा है, सरसों का प्रमाण और डिफरेंट होगा, ये सरसों का ही प्रमाण आ रहा है, और केवल 45 अंक प्रमाण करके हम नहीं निकालेंगे, हम यहाँ एग्जैक्ट संख्या निकालनी है, बादाल मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 31 शून्य सरसों का प्रमाण था। अब यहाँ देखो
वो गड्ढे में सरसों का प्रमाण है,
हाँ अभी यहाँ पर भी वही यूनिट्स है, पहले 256 लिखो, पहले बादाल को ले लो, बादाल 256 18 और 33 शून्य, और लब्धांकों में 11 का भाग देने से, ओ 11 का भाग देना है उसको, जम्बूद्वीप सदृश कुंड के ऊपर की हुई राशि के शिकाफल के गोल सरसों का प्रमाण प्राप्त होता है, और वह हमने क्या किया था, उसको डायरेक्ट उसी को किया था, वो 9 सोलह क्या, अच्छा वो 9 सोलह चला गया था, अच्छा यहाँ 2 जीरो बढ़ गए और 11 का भाग दिया,
तो ये कम हो जाएगा, 2 जीरो से गुणा किया और 11 से भाग दिया
मैंने 100 डिवाइडेड बाय 11
हाँ
तो भी क्या हुआ गुणित में आ जाएगा ना 11 के बदले 10 करो 10 गुना तो हो ही जाएगा नहीं समझी देखो 33 0 है यानी 100 गुना ज्यादा है और डिवाइडेड बाय 100 है 11 है आकरण 99 9 गुना तो हो ही गया ना
अच्छा तो ये 10,000 नियोजन का खड्डा है तो ऊपर 9
10,000 नियोजन नहीं 1,000 का है
सॉरी 1,000 है तो ये ऊपर का ना राशि 9,000
9,000 क्यों कह रहे आप
9 गुना हो गया ना 1,000 नियोजन का खड्डा है
हाँ
और ये 9 गुना हो गया तो
साइड में ऐसी साइड में कम होती चली गई ना टेपरिंग हुआ है डायरेक्ट उसका
पॉइंट है वो 9 गुना हाइट पे होगा तो 9,000 नियोजन
घनफल ज्यादा हुआ 9 गुना घनफल हाइट ज्यादा हुई ऐसा नहीं कह रहे हाँ ये बात अभी ख्याल में आई खास पहले तो ऐसा लगता है नीचे की ज्यादा है ऊपर थोड़ी कम हो जाएगी
हम लोग फिगर भी ऐसे ही बनाते
विशेषात कहते सुगम है फिर गाथा तो पढ़ेंगे देखो द्विरूप वर्ग धारा के फिर पढ़ेंगी मैं गाथा का ये बात आज जरा साइक हुई कि नीचे से वो ऊपर का शिखाफल ज्यादा है करके तीसरे और पांचवे वर्ग स्थान का यानी बादाल का और 256 का परस्पर में गुणा करने से जो लब्ध हो उसको 18 से गुणित कर 33 शून्यों से सहित करना चाहिए यही फिगर वहां 31 शून्यों से सहित किया था हमने दो शून्य ज्यादा है ना ये बड़ी तो है ही ना 9 गुना हमने बताया ना 9 गुना बताया बड़ा
पर 9 गुना होगा तो हाइट भी इतनी बढ़ जाएगी 9 गुना तो नहीं होगी पर
हाइट तो ज्यादा है ही पर साइड में कम होने से उसको इतनी गुना नहीं हो जाती नीचे की हाइट हमने 1,000 योजन देखी थी ऊपर की सेंटर में हाइट कितनी होगी परिधि का 11वां भाग अभी हमने 3,00,000 का 11वां भाग करके आपको बताया था नहीं नहीं ठीक है ना नेचुरली रेफरेंस तो होना ही है क्योंकि 11 से भाग दिया ना उसको 11 से भाग दिया है उसको इसलिए वो रेफरेंस तो होना ही है होगा ही क्योंकि 9 गुना है ना एक डिजिट बढ़ गया ना उसके हाँ एक डिजिट बढ़ गया उसका हाँ क्योंकि डेप्थ उसके कारण वो परिधि का 11वां भाग है उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई 1,00,000 व्यास है अब ऐसा देखो ना व्यास 1,00,000 है और वो 1,00,000 का ये 1,000 है केवल 1,000 यानी 10,000वां भाग है हम परिधि के बदले जरा उसको व्यास के प्रमाण में करके देखो देखो परिधि 3,00,000 है
व्यास 1,00,000
तो परिधि का 11वां भाग है ना
हाँ। ये तो राशि की है
अभी तो परिधि का 11वां भाग है तो परिधि के बदले व्यास को रखो
1,00,000 करेंगे
3,00,000 में व्यास कितने आएंगे 3 आएंगे
3
3 व्यास
3 into 1,00,000
तीन व्यास लिखो ना डायरेक्ट, यानी व्यास का 3/11 भाग है। तीन तो परिधि थी, 3 लाख परिधि का 11 और व्यास का 3/11 भाग, 3/11 भाग है। नहीं
तो 3/11 कितना हो गया? पॉइंट पे आएगा, पॉइंट पे आएगा। 3/11 इज इक्वल टू
पॉइंट
पॉइंट
11×22 वही तो पॉइंट है ना उसका, 11×22 आखिरी साथ ये 2727 आता जाएगा, 0.27
उसको गुणा किससे करना है? 100 गुणा से करना है।
ये डायरेक्ट आ गए ना उसका, और वो कितना है, 1000 कितना है?
वो उसका 10000 बता,
वो डायरेक्ट 1000 है ना।
हाँ,
तो 1000 है।
लाख का कितना होगा?
वो 1 लाख का
100वां भाग
हुआ, तो डेप्थ 100वां भाग है।
और ये
0.001 0.001 उसकी डेप्थ है,
और ये
0.27 उसकी
रियर। 27 टाइम हो जाएगा नहीं, बड़े बड़े पर बीच की हाइट जो है,
बीच की हाइट 27 गुना होगी,
27 गुना हाइट,
और टोटल एवरेज हाइट 9 गुना हो गई। अभी हमने देखा ना 9 गुना निकाला, सेंटर की हाइट 27 गुना हुई।
बराबर है, तो 1000 का 9000
वही तो, इसीलिए सेंटर की हाइट कितनी होती है ये प्रमाण निकालना। बहुत बड़ा है ना, इसलिए वो राशि ऊपर तक चली जाएगी ना। अब जमीन के बिना हाइट के अगर रास करते तो भी इतनी हाइट होगी।
हाँ।
उसको कितनी भी डेप्थ में चले जाओ, 1000 फुट 1000 योजन लाओ के, 1 योजन लाओ के, और नीचे 10000 योजन चले जाओ।
हाँ, ये राशि इतनी होगी
तो ऊपर की राशि उतनी ही रहेगी। ख्याल में आई ना बात? तो हमें जो नवा ऐसे जो अचरज लगा ना, हमें तो लगा गड्ढे में ज्यादा आएगी।
तो मेरू पर्वत 1,40,000 का है।
अभी मेरू पर्वत कहाँ से लाया?
नहीं, वहाँ पे भी ये गिनती करने वाले हैं ना, उसकी राशि ऊपर कितने है?
वहाँ कैसे आएगी? मेरू पर्वत कहाँ गया? मेरू पर्वत का सवाल ही कहाँ है यहाँ पर? आप क्या कह रहे हैं मेरू पर्वत की बात?
नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं, वो कुछ कंफ्यूजन चल रहा है।
नहीं नहीं, मेरू पर्वत के तो हिस्सा है।
अरे नहीं, वो तो खंबा है पूरा
है, और पीछे ऊपर तक है।
अरे सीधा है ना, वो तो वो बहुत है। अरे उसके डायमीटर, मेरू पर्वत का डायमीटर नीचे 10000 योजन का डायमीटर,
और हाइट 1 लाख,
और हाइट 1 लाख योजन की है। उसमें सिगाऊ का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो खड़ा का खड़ा पर्वत है ना, यहाँ उसकी कोई बात नहीं है। देखो हमारा कन्फ्यूजन तो वो शोभा बहन को क्या सुनाए, सुनकर कन्फ्यूजन होता होगा है ना। देखो हमने इतनी बात अभी तक ये ख्याल में आई हमारी कि पहले जब हमने वो गड्ढा भर गया था तो उसमें सरसों कितनी थी? बादाल मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 31 शून्य मल्टीप्लाइड बाय 31 शून्य नहीं, उसके ऊपर 31 शून्य, शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा।
नहीं, 31 0 एड करो।
हाँ, उसके ऊपर इतने 0 आ गए। अब यहाँ पर क्या है? वही बादाल गुना 256 और गुना 18, उसके ऊपर 33 0 और डिवाइडेड बाय 11। यहाँ तक बात ख्याल में आई ना? इलेवन का एक डिजिट कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे 11 लिए और ऊपर 1 0 2 0 एक्स्ट्रा आए। अतः सिद्धांकम उच्चारयति। अब गुणनफल द्वारा प्राप्त हुए अंकों का प्रमाण कहते हैं। सिद्धांक है ने सिद्ध हुए अंक, यानी वो पूरा भी उसके गुणाकार करके बताएंगे। वहाँ 1-9 वगैरह बताया था, ऐसे भी यहाँ 1-7 वगैरह बताएंगे। गाथा पढ़ेंगे पहले 25। इगिस गण वणव दुग नभ 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 नभट्ठ चौपण चौक पण सोलम सोलस छति सजुदम हरहिद चौरोय पढ़म सिहा एक सप्त नव नव द्विक नभो नभोष्ट चतु पंच चतुष्क पंच षोडश षोडश षट्त्रिंशद्युतम् हरहित चतुष्कम् च प्रथम शिखा। देखो 1 7 9 9 2 0 0 8 4 5 4 5 16 और इसके आगे षोडश षट्त्रिंशद्युतम् 16 बार 36 एवं 4 का 11वां भाग प्रथम कुंड की शिखा के सरसों का प्रमाण है। जैसे हमने अभी 3 लाख को भाग दिया तो 2-7 2-7 2-7 आते गए, ऐसे यहाँ पर 3-6 3-6 3-6 बातें आती जाएगी। विशेषार्थ अभी हमने पढ़े 1 7 9 9 2 0 0 8 4 5 4 5 1 यानी वो तो 5 के बाद 16 लिए डायरेक्ट, और 16 के बाद 36 36 36 36 लिखे उन्होंने 16 के बाद। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार ऊपर लिखा था ना, हमने भी उसमें एक कॉमा कॉमा करके देखे। और 4/11 अंक प्रमाण जम्बूद्वीप सदृश प्रथम अनवस्था कुंड की शिखा के सरसों होते हैं, मात्र वो ऊपर की राशि के सरसों होते हैं, ये पहले से ज्यादा है, बस इतनी बात अपने ख्याल में आ गई, ये फायदा हुआ। हाँ अथ कुंड शिखयो हो फलम मेलयित्वा उच्चारयति। क्या कहते हैं, कुंड और शिखा इन दोनों का, कुंड शिखयो हो द्विवचन है ना, कुंड का और शिखा का, दोनों का फल मेलयित्वा यानी मिलाकर बताएंगे। 26 नंबर वासद्ध कदीति गुणा देह गुणोकार सहिद वास गुणा एयारस पविभत्ता इच्छिद कुंडानम उभय फलम। ये उभय फल मिला उसको। वासद कदि जो है ना, वासद ने व्यासार्ध की कृति, अच्छा संस्कृत रह गया। 26 पेज पर 32 नंबर का पृष्ठ है, 26 नंबर की गाथा यहाँ पर देखेंगे हम संस्कृत में। व्यासार्ध कृति ही तिगुणा वेद गुण एकादश सहित व्यास गुणा एकादश प्रविभक्ता इच्छित कुंडा नाम उभय फलम। हिंदी में पढ़ेंगे अब कुंड और शिखा इन दोनों के क्षेत्रफल को मिलाकर कहते हैं। क्षेत्रफल यानी वो घनफल ही समझना हो। व्यास के अर्ध भाग का वर्ग कर उसको तिगुणा करना चाहिए। ये पहले हमने देखा था कि परिधि के छठे भाग का वर्ग कर किया था है ना, और उसको तिगुणा किया
त्रिज्या दे।
व्यास के अर्ध भाग का वर्ग कर उसको तिगुणा करना चाहिए। पुनः वेद को 11 से गुणित कर उसमें व्यास जोड़ना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का परस्पर में गुणा करने से जो लब्ध प्राप्त हो उसको 11 से भाजित करने पर विवक्षित कुंड और उसकी शिखा दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल प्राप्त होता है। देखो व्यास एक ल, उसका अर्धभाग एक ल द्वितीयांश, उसके वर्ग यानी एक ल यानी एक बटे दो ल गुणा एक बटे दो ल यानी एक द्वितीयांश ल गुणा एक द्वितीयांश ल को तिगुणा करने से क्या मिलता है, एक द्वितीयांश ल गुणा एक द्वितीयांश ल गुणा तीन प्राप्त होता है। कुंड की गहराई 1000 योजन है, इसे 11 से गुणित कर यानी 11000 कर व्यास में जोड़ देने पर, व्यास 100000 था ना, तो 111000 प्राप्त होते हैं। ये इन्होंने डायरेक्ट कुंड प्लस ऊपर का उन्होंने डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बताया, उसके लिए सूत्र बताया। फिर से ऊपर पढ़ के फिर नीचे आते हैं। देखो व्यास के अर्धभाग का वर्ग किया यानी आधा ल का वर्ग किया, उसको तीन गुना किया और वेद को 11 से गुणित कर, वेद हमारा 1000 योजन था, गुणित करने से 11000 हो गया। व्यास जोड़ना चाहिए यानी 100000 और 11000 हुआ। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का परस्पर में गुणा करने से जो लब्ध हो, यानी पहले हमने हाफ ल इंटू तीन किया था और
अभी 111000,
हाँ 111000 इसमें आए थे, अब वो दोनों का आपस में गुणा करना तो ये मिल जाएगा। देखो यहाँ लिखा ना विशेषार्थ की तीसरी लाइन, 111000 प्राप्त होते, इससे आधा ल गुणा तीन को गुणित करने से आधा ल गुणा तीन गुणा 111000 हुए। इन्हें 11 से भाजित करने पर कुंड और शिखा दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल, देखो आधा ल ऊपर रखा गुणा आधा ल गुणा तीन गुणा 111000 और सबको डिवाइडेड बाय 11, ये यहां तक उन्होंने बता दिया। अभी तद यथा कहकर वो किस तरह से है उसको यहां बता रहे हैं। अब उसको यहां लिख के रखेंगे, उसको बताएंगे कैसे प्राप्त हुआ। वासो तिगुणों परिधि, हमने देखा था व्यास के तीन गुना परिधि होती है, ये पहले हमने सूत्र में पढ़ा था, नहीं गाथा में 17वें गाथा में पढ़ा था। उसके अनुसार कुंड का क्षेत्रफल तीन ल गुणा एक चतुर्थांश ल गुणा 1000 प्राप्त होता है। ये तो आसान था, गोलाकार का हमने एरिया निकाली और उसको गहराई से गुणा कर दिया। वासो एवं गाथा 22 की टीका अनुसार सूचीफल तीन ल गुणा एक चतुर्थांश ल गुणा तीन ल डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि परिधि का 11वां भाग वो वेद था और उसके वन तिहाई लिखा था, वन थर्ड है। गाथा 26 के अनुसार खातफल को सिद्ध करने के लिए कुंडफल और शिकाफल इन दोनों में परिधि को तीन से छेद कर और तीन को गुणकार रूप से रखने पर कुंडफल और शिखाफल प्राप्त होता है। देखो क्या किया यहाँ पर उन्होंने, उनकी टोटल करनी है, हमें कुंडफल मिला था और अभी शिखाफल मिला है, अब उसको क्या करना है, हमको दोनों की टोटल करनी है। अब देखो ये 17 गाथा में इन्होंने लिखा ही यहाँ पर तीन ल गुना एक चतुर्थांश ल गुना 1000 आया था। हाँ, तो हम यहाँ टोटल करने के लिए ये फिगर्स आगे के आगे लिखेंगे। जैसे ये जो पहली लाइन में लास्ट में लिखा है ना तीन ल मल्टीप्लाइड बाय 1/4 ल मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। अब इसमें क्या हमको मिलाना है, प्लस, यानी जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम एक काउंट्स में रखेंगे, अब प्लस करना है। और दूसरी फिगर क्या है, देखो, तीन ल गुणा एक चतुर्थांश ल। अभी क्या है, यहाँ हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाइड किया था क्योंकि 1000 वेद था, और वहाँ हमको 3 ल डिवाइडेड बाय 11 से वो उसका वेद होता है और उसको 1/3 करना है हमको। तो 3 ल डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 यानी 1/3। अब ये समझना, आगे मैंने लिखा है ऐसा समझना। तो इनकी टोटल करना है तो दोनों के छेद समान होने चाहिए।
ग्यारह से गुना करना पड़ेगा, 11 और 4 इसको
दोनों में परिधि को 3 से छेद कर और 3 को गुणकार रूप रखने पर, यानी दोनों ओर हमें 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे। हाँ, 3 से गुणा और 3 से भाग करेंगे तो कुंडफल क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ 3 से पर यहाँ उनको नहीं मल्टीप्लाई बाय 3, उसको ये 3 उन्होंने अलग से निकाला,
उसके समान पीछे बात साइड पे दिखा रहा है।
तीन को गुणकार रूप से रख, परिधि को 3 से छेद कर और 3 को गुणकार रूप से रखने पर। अच्छा, यानी ये 3 उन्होंने अलग नहीं लिखा, ये ल लिखा और वो 3 अलग से लिखा, यानी वो एक ल लिखा है और मल्टीप्लाइड बाय 3 अलग से लिखा है उन्होंने, ये 3 अलग लिखा, 3 इंटू इतना, बराबर। अब यहाँ आगे क्या लिखा है,
3 इंटू
कुंडफल, ये मिल गया अपने को, वही फिगर वही है, फिर भी 3 अलग लिखे। और शिखाफल में भी
1 ल × 1 ल / 4 × 1 ल / 11 × 3 लिखा है,
इंटू 3 ल कैसे, आप में क्या फिगर लिखे, नीचे शिखाफल देखो, 1 ल गुणा अच्छा वो 1/3 ल था तो वो 3 से 3 गया, अच्छा 1/3 ल वो 3 ल से 3 ल कैंसिल हुआ। अब इसके भी वही बात रहेगी, इसको भी ये 3 अलग से लिया हूँ, यानी अभी ऐसा रह गया 1 ल इंटू 1/4 ल इंटू 1000 इंटू 3, अब ये एक ब्रैकेट प्लस, यहाँ पर भी लिखना है ल यानी 1 ल इंटू 1/4 ल, अभी इंटू ल डिवाइडेड बाय 11 है ना, और इंटू 3। अब ये यहाँ 1000 है और यहाँ ल बाय 11 है, ख्याल में आती है ना बात, तो उसके बाद अलग अलग लिखेंगे, बाकी जो कॉमन फैक्टर है उसको अलग निकालेंगे। तो दोनों को जोड़ने पर देखो दोनों में क्या क्या समान है, 1 ल गुणा 1/4 ल गुणा 3 इतना समान है। देखो 1 ल 1/4 ल, यहाँ 1000 को अलग रखो और यहाँ ल इंटू 1/4 ल इंटू ल बाय 11 है, आगे इंटू 3 है, तो यहाँ ये ल डिवाइडेड बाय 11 अलग है और यहाँ 1000 अलग है। अभी जो कॉमन है उसको अलग निकालो और ब्रैकेट में उनकी टोटल करो। तो हम ब्रैकेट के बाहर कैसे लिखेंगे, अभी देखो 1 ल सॉरी एक ल इंटू एक चतुर्थांश ल
इंटू तीन
इंटू तीन
वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा,
ये ब्रैकेट के बाहर यानी ये कॉमन फैक्टर है और अंदर ब्रैकेट के अंदर यानी ये इससे ब्रैकेट की पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 1000 प्लस
एक बाई इलेवन
ल बाई इलेवन यानी एक ल बाई इलेवन, एक ख्याल में आई बात, यहां तक पहुंचे हम। दोनों फिगर में जो कॉमन था उसको बाहर निकाल के ब्रैकेट में 1000 प्लस लाख का ग्यारहवां भाग, अब उसको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो समच्छेद करना पड़ेगा ब्रैकेट की बात। तो यहां हजार के नीचे कोई छेद नहीं, यानी छेद नहीं उसका अर्थ होता है एक है छेद, तो उसको ऊपर और नीचे 11 से गुणा करना पड़ेगा। यानी ब्रैकेट के बाहर जो है वो अभी हम उसको क्ष मान देते हैं, उसकी वैल्यू बाद में रखेंगे। और ब्रैकेट में क्या होगा, 11000 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 100000 डिवाइडेड बाय 11। तो इसमें क्या हुआ, लाख में 11000 मिल गई ना, लाख में 11000 मिला के 11 से भाग देंगे, इसकी टोटल हो गई। तो 111000 यानी एक के ऊपर 11 लिख के फिर हजार करना, 111000 ल है ये डिवाइडेड बाय 11। यहाँ देखो नहीं ल नहीं है, वो ऑर्डिनरी है,
नहीं और लाख निकाल दिया ना हमने, 100000 कर दिया ना,
100000 को हमने लाख कर दिया, हमने लाख कर दिया, लाख की वैल्यू हमने लिखनी, फिर ल नहीं लिखना है। यानी 111000 डिवाइडेड बाय 11 और उसमें वो क्ष जो हमने बाहर निकाला था
उसको जोड़ दो,
यानी 1 ल इंटू 1 चतुर्थांश ल इंटू 3
इंटू
111000 इससे ये इसको गुणा कर दे। तो देखो ये क्या बात आई यहाँ पर, इस प्रकार कुंड व शिखा इन दोनों का खाद फल, देखो ये हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला था, एक ल गुना
एक ल डिवाइडेड बाय एक चतुर्थांश ल,
ये हमारे में तीन चतुर्थांश ल है,
ये हमारे में गलत लिखा है,
हमारे में गलत है, एक चतुर्थांश ल चाहिए, वो एक करो उसको, अच्छा है। और अच्छा हमने गलत पुस्तक निकाला तो उसमें करेक्शन तो हो जाएगी, इंटू 111000 डिवाइडेड बाय 11 अर्थात अभी वो चार को दो बाजू डिवाइड किया उन्होंने, एक द्वितीयांश ल गुणा एक द्वितीयांश ल गुणा तीन गुणा 111000 डिवाइडेड बाय 11 अर्थात व्यास द्वितीयांश इंटू व्यास द्वितीयांश इंटू तीन इंटू 111000 डिवाइडेड बाय 11। अभी उसका उन्होंने फॉर्मूला कैसे किया, अर्थात
व्यास
के आधे का वर्ग गुणा तीन गुणा, अभी जो हमने वो तो 111000 डिवाइडेड बाय 11 प्राप्त होता है, इसके व्यवहार योजन अंगुल य एवं गोल सरसों बनाना चाहिए। अभी तो सरसों को ही गिन रहे हम, देखो एक शिखा सहित अनवस्था कुंड का चित्रण, वो देखो ना उन्होंने जो बनाया ना चित्रण, उन्होंने करीबन 10 सेंटीमीटर का बनाया है व्यास, और 1 सेंटीमीटर का बनाया है हाइट, नॉट टू स्केल, अभी 1/10 ही बनाया है,
तो
1/10 होता है तो हजार हो जाता है, 10000 हो जाता है अंदाजे समझाने के लिए,
पर ये मिसकंसेप्ट हो जाता है।
नहीं मिसकंसेप्ट की बात नहीं है, हमको समझना है, अभी वो मिलीमीटर सेंटीमीटर के बदले मिलीमीटर करेंगे ना तो एग्जैक्ट उसकी बात आ जाएगी।
पर तो ये ऊपर जो हाइट रहता है ये राशि की वो और बढ़ाने के लिए,
वो नहीं उसकी हाइट कम करेंगे तो बढ़ी जाएगी ना।
हाँ ये यहाँ
हाँ
ये 10 एमएम कर देंगे
नहीं उसमें कुछ नहीं करना है हमको, ये तो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाता है कि वो ऐसी कैसी राशि करनी है, बस इतनी बात है। अब 27 नंबर, अथ राश्यम राश्य अंकम उच्चार रहती, उस राशि के अंक अभी बताएंगे। ये क्या, ये यहाँ ली दिया ना, व्यास के आधे का वर्ग करना, तीन गुना करना, फिर इससे गुना करना, तो कितने अंक मिल जाएंगे उसके, सरसों वगैरह उसको बताएंगे। अब सरसों की संख्या बताएंगे यहाँ पर। 27 नंबर, बादाल मठ घणैगे हीन सहसा हदम एगार हिदम इगितीश सुन्न सहियम जम्बूदी भूय सिद्धत्था बादाल मष्ट घनैक हीन सहस्राहतम एकादश हितम एकत्रिंशत् शून्य सहितम जम्बूद्वीपो भय सिद्धार्था। उभय है ना, कुंड और शिखा उभय मिलकर इतने ही सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध यानी वो इतने सरसों नक्की हो जाती है। एक अब उपर्युक्त उभय फल में सरसों राशि के अंक कहते हैं, यानी इतने तो हमने उसके व्यवहार, ये जो ऊपर जो हमें प्राप्त हुआ था ना व्यास के आधे का वर्ग इंटू तीन वगैरह, वो तो योजन थे, प्रमाण योजन, उसके व्यवहार योजन करेंगे, उसको 500 से तीन बार गुणा करेंगे, 768,000 से तीन बार गुणा करेंगे, 8 से 6 बार गुणा करेंगे, तब सरसों मिल जाएंगे। तो ये उसका टोटल अभी बता रहे हैं, उसकी संख्या कितनी आती है, तो बादाल को 8 के घन एवं 1,000 से गुणित कर, ये आसान कर दिया उन्होंने, 11 का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उसे 31 शून्यों से सहित करने पर जम्बूद्वीप सदृश कुंड और उसकी शिखा दोनों के क्षेत्रफल स्वरूप सरसों का प्रमाण प्राप्त होता है। अब हमने पहले में क्या देखा था, देखो बादाल मल्टीप्लाइड बाय 256 गुना 18 मल्टीप्लाइड बाय 31 शून्य, मल्टीप्लाई ने उसके ऊपर 31 शून्य, ऊपर प्लस भी नहीं करना ऊपर। अब फिर शिखा में क्या लिया था, बादाल 256 18 और 33 0
लिया
और डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11 था, चार वहां नहीं था, वो टोटल में 4/11 वो टोटल सरसों की संख्या आई थी, 4/11 वो तो बाद में उसका पूर्णांक करने पर वो बताया था, पूर्णांक करने के बाद वो 4/11 हुई थी, यह तो हम केवल नीचे 11 लिख लिए। अब यहाँ दोनों की टोटल करनी है, तो दोनों की टोटल कितनी होती है, बादाल फिर 512 वहाँ 256 था और गुणा 18 था, यहाँ 256 गुणा 2 ही हो जाता है, 512 आ गए 8 के घन,
8 का घन
प्लस करके ये संख्या आ जाएगी, बादाल मल्टीप्लाइड बाय 512 वो टोटल संख्या बताई, ये टोटल संख्या बता रहे हैं उसकी संख्या
जैसे,
हाँ कितनी आएगी, हाँ मिला ना ना, हाँ पर बादाल में बादाल ऐसा नहीं मिला ना, देखो उनका ऐसा प्रश्न है, उस संख्या में भी बादल थे, इस संख्या में भी बादल है, तो दो बादल तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है, सुनो सुनो सुनो
यहाँ पे ये 512
सुनो जरा, जैसे हमारे पास हमारे पास 10,000 है और उसमें 1,000 मिलाना है, तो हम कहेंगे 100 × 100 है और इसमें 100 × 10 है, तो 100 और 100 पहले मिला के नहीं मिलाना, ये आगे के डिजिट में आ जाएगी वो बादल वाली संख्या, वो 31 जुड़े वाली जो है ना उसमें से यहाँ जो बादाल संख्या शुरू होती है, बादाल गुना 256 गुना ये हो जाती है और आगे 31 जीरो है। अब यहाँ बादाल वगैरह गुना है परंतु आगे 33 जीरो है, यानी ये बादाल आगे चले जाएगी, इसके आगे दो डिजिट्स आगे, और वहाँ जाके वो बादाल फिट हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, और वो 31 डिजिट्स है, जैसे हमने 10,000 और 1,000 है कहेंगे, ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे दो डिजिट छोड़कर फिर 31 वाला लिखेंगे,
हो जाता है, और उसको 11 का भाग देते
हैं, और उसको भी 11 का भाग देना है, एक डिजिट का डिफरेंस होता है, एक डिजिट का डिफरेंस पड़ जाता है। हाँ, परंतु 11 से डिवाइड करने के कारण उसकी फिगर अलग आ जाती है, वो बादल प्लस बादल ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ क्या क्या आ गया? बादल मल्टीप्लाइड बाय 512 एवं 999, 8 का घने 512, हम डायरेक्ट करेंगे बादल मल्टीप्लाइड बाय 512 मल्टीप्लाइड बाय 999, इतना जाए ना, उसको गुणित करके 11 का भाग देना। हाँ हाँ, वही तो डायरेक्ट उन्होंने निकाल के बताया, और जो लब्ध आएगा उसे 31 शून्यों से सहित करने पर जम्बूद्वीप सदृश कुंड और उसकी शिखा दोनों के क्षेत्रफल स्वरूप सरसों का प्रमाण प्राप्त होता है। वो 11 का भाग रखा ही है उन्होंने नीचे, इसलिए वो लास्ट में जो 4-11 अंश हो जाता है उसका अपूर्णांक पूर्णांक करके, वो बात उसकी बाद में आएगी, पहले 11 केवल नीचे ही रखना है हमको, उसके पूर्ण अपूर्णांक नहीं बनाते हुए। तो बादल मल्टीप्लाइड बाय 512 मल्टीप्लाइड बाय 999 डिवाइडेड बाय 11 और आगे उसके 31 शून्य रखना। अब कहते हैं विशेषार्थ सुगम है। अब ये परस्पर गुणा करने पर कौन सी संख्या आएगी, अंक उसके कैसे होंगे, वो कल देखेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।